Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanand Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan, 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 Narayan. ॐ वालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनिवर्तमानमहमीत्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये विहाय पीयूषरसं मुनीश्वराः ममाङ्घ्रिराजेव रसं पिबन्ति किम् इति स्वपादाङ्घ्रि इति सुपादाम्बुजपानकौतुकी सगोपवालः श्रियमातनोतु वः श्री संत भगवान पधारे। हम तो कथा के पहले ही नमो महाद्भ्या कर लेते हैं। धरती के कोने पर कहीं भी कोई महात्मा विराजमान है और अपने सबके परमाणु से विश्व को शांति प्रदान कर रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं, हे वायु देवता, मेरा प्रणाम उनके चरणों तक प्रेषित कर दो। वायु देवता प्रेषित कर देते हैं। तो महात्माओं का चमत्कार, महात्माओं की महिमा भगवान भी गाते हैं। तस्याम सुलभ पार्थ सुमहात्मा सुदुर्लभा। महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं और हम कहते हैं भगवान अपने के लिए कि हम तो बड़े सुलभ, जहां देखो तहां मिल जाते। नारायण नारायण। तो हम सब मिलकर के महात्माओं का स्वागत करते हैं। नारायण नारायण। तो देखिए, कैवल्य उपनिषद चल रहा है। आज दो मंत्र हैं, तो दोनों मंत्र एक साथ मिले हुए हैं। और ये गीता में भी है, गीता में आया है ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये 15वें अध्याय का 15वां मंत्र है और वही यहां आया है। सर्वई की जगह यहां अनेक ही कर दिया, वेदैर अनेकई, ये कह दिया, वेदैर अहमेव अनेकई, वेदैर अनेकई रहमेव वेद्यो, मई अनेक वेदों से वेद हैं। तो वेदैर अनेकई रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। न पुण्य पापे मम नास्ति नाशो, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति, न भूमिरापो न च वह्निरस्ति, न चा नीलो मेस्ति न चाम्बरम च। एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयं समस्त साक्षिं सदमद्विहीनं सदसद्विहीनं अप्रयाति शुद्धं परमात्मरूपं। ये दो मंत्र दिए गए हैं। जरा अब इन पर थोड़ा विचार कर लें। कल आपने ये सुना था कि बिना कर्मेंद्रियों के, बिना ज्ञानेंद्रियों के और परमात्मा सब काम करता है। तो परमात्मा कैसा है जो बिना ही, बिन पग चले सुने बिन काना लो, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्तावर जोगी आनन रहित सकल रस भोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। सो प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सबुर अंतर्यामी। भगवान शंकर कहते हैं कि जिनका आद्यंत को उजासु न पावा, मति अनुरूप निगम नित गावा। वेद ने भी जो वर्णन किया है वो वर्णन के पहले ही भगवान है। तो वेद ईर अनेक अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये वेद जो एव शब्द आया ना वो चार में लगेगा। देखो वेदई एव वेद्यः एक, और अहमेव वेद्यः दो, और वेद्यः एव तीन, और वेद्य एव किंतु सर्वई वेदई अनेकई वेदई, ये चार लगेंगे। और वेद कहां से आए? यस्य निःश्वसितं वेदाः, जिसकी श्वास वेद है। अब आप सोच सकते हो श्वास अगर जरा देर के लिए बंद हो जाए तो हमेशा के लिए बंद हो जाए ना, जीवन है। तो भगवान का जीवन है वेद। वेद शब्द चार प्रकार से बनता है। वेद रूपम विदज्ञाने, विन्ते विद विचारणे, विद्यते विद सत्तायाम, विद लाभे च विन्दति। ये सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से पाणिनि जी ने चार प्रकार से वेद शब्द बनाया। विद, उस विद धातु का वेत्ति बनता है। विद ज्ञान अर्थ में है, जो ज्ञान प्रदान करे, जो ज्ञान स्वरूप होए, वो वेद है। वेद रूपम विद ज्ञान है, और विन्ते विद विचारणे, और विचार अर्थ में विन्ते बनता है, और सत्ता अर्थ में विद्यते बनता है, और लाभ अर्थ में विन्दति बनता है। तो अब देखिए जिससे वित्त बनता है ना, धन रुपया पैसा, वो इसी से बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान, विचार, सत्ता और परम लाभ, ये चार बातें वेद से मिलती हैं। ध्यान देना, ज्ञान भी मिलता है, विचार सद्विचार भी मिलते हैं, सत्ता मालूम पड़ती है कि किसकी सत्ता में हम लोग रह रहे हैं, और परम लाभ क्या है। यम लब्ध्वा हि परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करके और कुछ लाभ दूसरा बचना रहा है वो परम लाभ क्या है, ये वेद बताता है। तो वेद भगवान की श्वास है, और वेद क्या कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते। एक ही है परमात्मा, लेकिन विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग और बहुत प्रकार से नाम रूप में वर्णन करते हैं। वर्णन की एक शैली है। भगवान यहां चार प्रकार से बताते हैं। देखो, अनेकई वेदई अहमेव वेद्यः, जितने भी वेद हैं अर्थात ऋग यजुः साम अथर्व चार वेद, और फिर मंत्र ब्राह्मण और आरण्यक तीन भाग है उनके, और फिर कर्मकांड का वर्णन करते हैं, उपासना का वर्णन करते हैं। कर्मकांड के 80,000 हैं, उपासना के 16,000 हैं, और 4,000 कुल उपनिषदों के हैं ज्ञान भाग। तो ये सब के सब अनेकई वेदई, अनेक वेदों के द्वारा मैं ही जानने लायक हूं, एक पहली बात तो ये बताते हैं। क्यों? बोले कर्मकांड से ये बताते हैं, भले ही स्वर्गाय यजेत कहते हों, स्वर्ग के लिए हवन करो, अथवा अमुक चीज पूरी मिल जाएगी तो इस देवता का पूजन करो, उस देवता का पूजन करो, तो ये जो वेद बताते हैं कर्मकांड, उसका भी तात्पर्य परमात्मा ही परख है। उसको जब जानोगे, सकाम धर्म करोगे, और जिस देवता की आपने आराधना की उससे कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी। और श्रद्धा होने पर उसके ही भीतर बैठ के भगवान पूरा काम कर देते हैं। तामेव विदधाम्यहम् गीता में भगवान कहते हैं, मैं उसी में प्रवेश करके उसी के द्वारा कार्य सिद्धि कर देता हूं। तो आप जरा देखो, संपूर्ण वेदों कर्म कांड में जो विधि आई वो चित्त शुद्धि के लिए है, अब फिर आई उपासना, वो हृदय को पिघलाने के लिए है। हृदय लाख की तरह कठोर हो जाता है अहंकार के कारण, जैसे लाख लाख होती ना कठोर, और उसको जरा सा आग में दिखा दो तो पिघल जाएगी, अब फिर उसमें मुहर लग जाएगी तो कपड़ा फट जाए, कागज फट जाए, लेकिन मुहर नहीं हटती। इसी प्रकार से भक्त लोग जो उपासक हैं, वो अपने इष्ट देव की मुहर अपने पिघले हुए हृदय में लगा लेते हैं। अपना अपना दिल टटोल के देखो जरा, नाम रूप की अगर मुहर नहीं लगी है तो हृदय बेकार। हृदय अकेला रक्त संचार नहीं करता, हृदय में दया है, करुणा है, क्षमा है, उदारता है, इन सब का केंद्र है हृदय। इसलिए हृदय में श्रद्धा भक्ति का उदय होता है। तो हृदय दया करुणा क्षमा उदारता का केंद्र है। रक्त संचार का तो समझ लेते हैं कि रक्त संचार का केंद्र है वो हृदय। तो पिघले हुए हृदय में माने जब अहंकार घट जाता है तो हृदय पिघल जाता है। और पिघले हुए हृदय से दो बातें होती, एक तो आंसू के बहाने से पानी निकलता है, पिघलता है ना, और दूसरी बात एक ये मुख्य होती है कि हृदय में जब पिघलाहट होती है, हृदय में जब नम्रता आती है, विनम्रता आती है, तो वही भक्त बनता है। तब उसके जीवन में आता है निज प्रभु मैं देखहिं जगत कहिसन करहिं विरोध, उनका राग द्वेष कट जाता है, परमात्मा का ही दर्शन सब में करते हैं। फिर तो उसको दिखाई देता है एवरीबडी इज एन एक्टर, विश्व में प्रत्येक एक एक्टर की तरह काम कर रहा है, परमात्मा ही तो है। ये जब दिखाई देने लगता है तो ये वेद बताता है, उपासना कर्मकांड से चित्त की शुद्धि हुई, उपासना से ये बताया। अब आया छोटा सा ज्ञान कांड 4000 मंत्रों का, तो उसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। चार वर्णन होते हैं, बोलो, संबंध, संविधान, स्वभाव, स्वरूप। तो जो भक्त होता है वो बैठे ठाले क्या करता है, बोले भगवान के स्वभाव का वर्णन किया, भगवान ऐसे उदार हैं, देखो एक जाति का गीध और उसको उठाकर छाती से लगा रहे हैं, ये स्वभाव उनका वर्णन। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, तो स्वभाव का वर्णन करते हैं। फिर संबंध, भगवान का जिससे संबंध जुड़ जाता है, चाहे वो हनुमान हो चाहे मधुमंगल हो, तो स्वभाव का वर्णन, भगवान के स्वभाव कैसे हैं, कैसे कैसे। और फिर जिनका जिनका उनसे संबंध जुड़ जाता है, जो जीव उनसे संबंध जोड़ लेता है, देखो मीरा को, देखो प्रहलाद को, देखो ध्रुव को, इनको देखिए ना, ये संबंध जोड़ बैठे हैं, कबीर जी संबंध जोड़ बैठे हैं, तुलसीदास जी संबंध जोड़ बैठे हैं। और फिर तीसरा नंबर है संविधान का, भगवान का संविधान क्या है, बड़ी उदारता पूर्वक वानरों ने पूछा कि प्रभु आप तो संधि प्रस्ताव भेज रहे हैं बार बार अंगद के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा, और अगर मान लो संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया रावण ने, और आप तो विभीषण को लंका का राज्य दे चुके हैं, तो फिर क्या होगा। तो बोले तो फिर क्या बात, मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ एक यह है कि उनका संविधान है, एक बार जाकर नाम मरत मुख आवा, होत मुकुत श्रुति ग्रंथन गावा, वो मुक्त हो जाता है। ये संविधान है उनका। सन्मुख होए जीव मोय जबही जन्म कोटि अविनाश है तबही, ये संविधान है। और फिर अंत में है स्वरूप। तो भक्त चार बातें वर्णन करता है, स्वभाव का और संबंध का, संविधान का और स्वरूप का। तो भगवान कहते हैं अनेकई वेदई अहमेव वेद्यः, अनेक वेदों के द्वारा मैं ही जानने लायक हूं। और वेद क्या है? यस्य निःश्वसितं वेदा, उनके प्राण हैं, उनका जीवन है। तो अब जरा सोच के देखो कि वेद माने ज्ञान, ज्ञान पहले है कि आप पहले हैं? ये विचार करो। अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान से ज्ञान कैसे प्रकट होगा? इसका मतलब ज्ञान अनादि है और भगवान अनादि अनंत है। तो भगवान ने वेद बनाया, भगवान की श्वास से निकला वेद, तो इसलिए वेद के द्वारा हम जानने लायक हैं। सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने लायक हूं। और फिर मैं ही जानने लायक हूं, दो बातें, आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्य मंतव्या निधिध्यास्तव्या, सचमुचों परमात्मा ही तो जानने लायक है। तो अनेक वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है, मैं ही जानने लायक हूं। और परम कर्तव्य जीवन की सफलता का यही है कि परमात्मा के स्वरूप को जानो। वेद्या एव यह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति, न चेद अवेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विविच्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकात् अमृता भवन्ति। श्रुति भगवती कहती है कि देखो भाई, दुनिया में आए हो, अगर अपने मनुष्य का लक्ष्य सिद्ध नहीं किया तो फिर क्या फायदा? मनुष्य का लक्ष्य क्या है? ये चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति। इस दुनिया में आकर के अगर जान गए उस जानने वाली परमात्मा को, आत्मा को, कि हमारी आत्मा हमारा स्वरूप है, तो सत्य, तो जीवन सफल। और न चेद अवेदीन, अगर यहां आकर के नहीं जान पाए तो महती विनष्टि, जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ। जो न तर भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महनि गति जाय। वो तो आत्महत्यारा है, सुन लो कान खोल के। जिस मनुष्य ने यहां आकर के अपने स्वरूप को आनंदमय आत्मा रूप सच्चिदानंद रूप स्वरूप आत्मा को नहीं जाना, उसका तो जीवन ही बेकार हो गया, उससे तो कुत्ता बिल्ली ठीक है। इसलिए कह रहे हैं वेद्या एव अनेकई वेदई एव वेद्या और अहमेव वेद्या और वेद्या एव, जानने लायक एक वस्तु है वो परमात्मा है। और कहते हम ही गुरु हम ही शिष्य, वेदांत कृत माने वेद के अंत माने उपनिषदों में जो वेदांत ज्ञान है उसका निश्चय करने वाला, वेदांत कृत माने वेदांत, वेदांत को बनाने वाला नहीं है, वेदांत का निश्चय करने वाला। वो निश्चय हो जाए जीवन में कि ये वेदांत है, ज्ञान विचार सत्ता और परम लाभ यही है कि परमात्मा के स्वरूप को जान जाए, ये है असली बात। इसलिए यहां का वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, हमें ही वेदांत का निश्चय करके कि आत्मा ही नारायण परमात्मा का ज्ञान अपने आत्मा के रूप में ही साक्षात अपरोक्ष होता है, इस बात को अच्छी तरह समझ जाए। और ब्रह्मात्मयी के वाक्य के द्वारा हम ही गुरु जी बन करके समझाते हैं और हम ही समझते भी हैं। कहते वेदांत कृत अहम और वेदांत कृत, वेदांत का निश्चय करने वाला मैं हूं, वेदांत विद और वेदांत का विद माने जानकार शिष्य भी मैं ही हूं, गुरु चेला अपने ही बन गए सब। असल में जो वस्तु मन में भरी होती है और वो नाशवान वस्तु होती है, वही बार बार मन को कुरेदती रहती है। और मन जब आत्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मा में विराजमान हो जाता है, तो जब मन ही नहीं है तब वस्तुएं भी नहीं है। तो इसलिए जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए दुनिया में कोई चीज नहीं है, बस केवल परमात्मा है, आत्मा है, आत्मनिष्ठ है। इसलिए यहां एक बात और कही, कहा कि देखो भाई, ये जो जीवन है जिसको हमने कहा है तो ये कर्म से बनता है। हाँ, बोले ठीक है। आ कर्म तो भले भी होंगे बुरे भी होंगे, बोले हाँ ये भी बात ठीक है। लेकिन सूर्य, सूर्य तो सबको प्रकाशित करता है, सूर्य भले को भी करता है बुरे को भी करता है। सूर्य के प्रकाश में चाहे भागवत पढ़ो चाहे जुआ खेलो, मना नहीं करेगा, लेकिन सूर्य प्रभावित नहीं होता है। तो कहते न पुण्य पापे, मेरे में कोई पुण्य पाप नहीं, क्योंकि इसी का तो सुख दुख होता है ना। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। तो हम तो करता ही नहीं है, तो जब करता नहीं है तो सुख दुख कैसा, पाप पुण्य कैसा। वो पाप पुण्य वाली बुद्धि नहीं है। न जन्म देह इंद्रिय बुद्धि रस्ति, देखो न मन है न प्राण है न देह है न बुद्धि है। ये नहीं नहीं कह के क्यों समझाया? आपको मैंने निवेदन किया था पिछले मंत्रों में कि पहली बात तो एक जो आपने सुनी अभी कि मन में ये सब चीजें आती हैं, और मन आत्मनिष्ठ का व्यक्ति आत्मा आश्रित हो जाता है। तो जब मन ही नहीं है तब फिर वर्णन कौन करे? भगवान ने जब हनुमान जी के ऊपर सिर पर हाथ रखा तो शंकर जी कथा कह रहे थे, भोले बाबा ने टटोने लगे कि अरे हमारे सिर पर हाथ भगवान का आ गया। तो पार्वती जी कहने लगी क्या कर रहे हैं, कथा नहीं कर रहे हैं? बोले कथा तो कह रहे हैं लेकिन ये आ गया, ये क्या आ गया? कही ये हाथ आ गया ना, ग्यारहवें रुद्र भगवान ही तो है। तो सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर ने अपने मन को सावधान किया, निकाला, और जब निकाला तब वर्णन किया। तो भाई मन को तो निकालना पड़ता है ना। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कही तो भागवत में आया जिसे आदि में भी अंत में भी मध्य में भगवान का ही वर्णन, शुरू में भी अंत में भी बीच में भी सब भगवान, आदि में मध्य में अंत में भगवान का नाम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाशवान वस्तुएं जितनी भी हैं वो सब सबकी सब मन में रहती हैं, और मन उनको लाए लाए के करता है। और आत्मनिष्ठ व्यक्ति का मन ही गायब हो जाता है, मन अपने आत्मा में आश्रय में लयलीन हो गया, बस फिर जरूरत नहीं। ये मनीराम तो कुरेंते हैं आपको,